युग के सलाह देने पर तारा ने ध्रुव को अपने प्रेग्नेंट ना होने की बात को बता दिया था। हालांकि युग ने यही कहा था कि तारा उसे पूरा सच ना बताए। उसे सुनने के बाद ना जाने ध्रुव का क्या रिएक्शन निकल कर आए। युग के बोलने के बावजूद तारा ने ध्रुव को सब कुछ सच सच बता दिया था। जैसे ही तारा ने ये कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसने ये सब ध्रुव के रूखेपन की वजह से किया था, ध्रुव के कदम वहीं दरवाजे पर रुक गए थे। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए तारा उसके रिएक्शन नहीं देख पाई थी। तारा उसके पीछे खड़ी रो रही थी। उसने सिसकती आवाज में कहा, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं मजबूर हो गई थी। तुम मुझे समझने और सुनने के लिए तैयार तक नहीं थे, और मेरी प्रेग्नेंसी का सुनते ही तुम मुझे माफ़ करने तक को तैयार हो गए। मुझे पता है मैंने गलत किया है, और तुम चाहो तो पहले की तरह मुझसे गुस्से में बात कर सकते हो, मुझे बात बात पर इंसल्ट कर सकते हो। अब तुम्हें मेरी केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तारा को यही लगा था कि ध्रुव ना जाने गुस्से में क्या करेगा। मन ही मन उसने खुद को इसके लिए तैयार भी कर लिया था। वो ध्रुव के पीछे खड़ी उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि तभी ध्रुव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो जल्दी से उसके पीछे दौड़कर गई। ध्रुव को रोकने या पीछे से कुछ बोलने तक की हिम्मत तारा को नहीं हो रही थी। वो बस उसे जाते हुए बेबस निगाहों से देख रही थी। वो मेरी प्रेग्नेंसी का सुनकर हड़बड़ा गया था, और अभी तो मुश्किल से दो दिन भी नहीं हुए। क्या वो इतना अटैच हो गया था कि सच सुनकर उसका दिल टूट गया? ये मैंने क्या कर दिया, तारा ने सर पकड़कर कहा। अब उसे खुद के झूठ बोलने पर पछतावा हो रहा था। तारा जल्दी से अंदर आई और उसने सीधे युग को कॉल लगाया। उसने युग के कॉल रिसीव करते ही जल्दी से कहा, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है मिस्टर राणा, लेकिन उसका बिहेवियर काफी अजीब था। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, ना डांटा ना गुस्सा किया, और ना ही ये कहा कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसकी चुप्पी मुझे डरा रही है। तारा की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे थोड़ा टाइम दो, युग ने इतना ही कहा और कॉल कट कर दिया। युग उस वक्त अपने कमरे में अकेला था। उसने तुरंत नर्स को कहकर अर्जुन को बुलाया और तारा के बारे में डिस्कस किया। वो अर्जुन ही था जिसने तारा की प्रेग्नेंसी को रिवील किया था। युग ने अर्जुन की तरफ घूर कर कहा, अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो बड़ों का फर्ज बनता है कि वो उसे समझाएं। उल्टा तुमने उसकी बेवकूफ़ी में उसका साथ दिया। मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। सच कहूं तो इस बार मैं इसे बेवकूफ़ी ही कहूंगा, क्योंकि जब तारा ने ये प्लान मेरे सामने रखा था तब मैंने उसे साफ मना कर दिया था। तारा मान भी गई थी, फिर ना जाने मुझे क्या हुआ जो मैंने तारा के प्रेग्नेंट होने की बात कह दी। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। ध्रुव उसके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा था। तुम अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं हो? अर्जुन ने अपनी गलती एक्सेप्ट जरूर की थी, लेकिन उसने सारा ब्लेम ध्रुव पर ही डाल दिया था। अच्छा, तो अब तुम अपने झूठ के लिए ध्रुव को ब्लेम कर रहे हो। थैंक गॉड क्रिश तुम्हारी तरह नहीं है, युग ने आईज रोल करके कहा। अर्जुन के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। उसने युग की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जब मैं मामले को संभालने के लिए तैयार था तो फिर तुमने तारा को ये क्यों कहा कि वो ध्रुव को सब कुछ बता दे? मैं मेडिकली हैंडल करने के लिए तैयार था। वो बच्चा नहीं है जो तुम बार बार आकर उसके सामने झूठ बोलोगे और वो मान जाएगा। अगर वो अपने तरीके से पता लगाता और फिर सब सामने आता तो तुम्हें अंदाज़ा भी है उनका रिश्ता किस हद तक बिखर जाता। ऑलरेडी मेरे लिए चीज़ें संभालना मुश्किल हो रहा है, उसके ऊपर तारा और तुम मिलकर मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। बाहर चले जाओ और मेरे डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाओ, यहाँ बैठकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, युग गुस्से में चिढ़कर बोला। अगर कोई और मामला होता तो अर्जुन खुद को सही साबित करने के लिए युग से घंटों बहस कर सकता था, लेकिन इस बार सच में उसी ने गलती की थी तो किसी तरह की बहस करने का सवाल पैदा नहीं होता था। फिलहाल अर्जुन का वहां से जाना ही सही था। उसने हाँ में सिर हिलाया और युग के बताए अनुसार उसके डिस्चार्ज पेपर तैयार करने शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव को गए हुए एक घंटे हो गए थे, लेकिन ना तो वो वापस घर आया था और ना ही उसने तारा के किसी मैसेज या कॉल का जवाब दिया था। तारा उसके बारे में सोच सोचकर पागल हो रही थी। उसने युग को भी इस बीच दो से तीन बार कॉल कर दिया था। अब तो उसके कॉल से युग भी परेशान हो गया था। मजबूरन युग को ध्रुव को कॉल करना ही पड़ा। ध्रुव कभी उसका कॉल इग्नोर नहीं करता था। उसने कॉल रिसीव किया और धीमी आवाज में कहा, अगर आज आप फिर से उसका फेवर लेकर मुझे समझाने के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूं डैड। ये दूसरी बार है जब उसने मुझे मेरे इमोशंस के चलते बेवकूफ बनाया है। ध्रुव इस वक्त अपने ही घर के बेसमेंट में बने टॉर्चर एरिया में बैठा हुआ था। तारा तो जानती तक नहीं थी कि ध्रुव इस वक्त घर में मौजूद है। उसने बस ध्रुव को सीढ़ियों से नीचे उतरने
और फिर वहां से बाहर निकलते देखा था। उसके बाद वो वापस कमरे में आ गई थी। कहीं ना कहीं इसका कारण तुम भी हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए? युग ने समझाया। उसे मेरे बात करने से प्रॉब्लम है तो मैं उससे बात भी नहीं करूंगा, पर इस बार मैं उसे माफ नहीं करने वाला हूं। उसने ये जानबूझकर किया है। सीरियसली, उसने प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला? जब भी उससे प्यार करने का सोचता हूं, वो मुझे हर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर ही देती है। और प्लीज, आप हम दोनों के मामले में बीच में मत बोलिए, ध्रुव ने जवाब में कहा और कॉल कट कर दिया। इस वक्त उसका मूड इतना खराब था जो शायद ही कोई सही कर सकता था। ध्रुव को अपना मूड सही करने का एक ही तरीका समझ आया था, और वो था पूरी तरह काम पर ध्यान देना। उसने अपने सामने बहुत सारे नक्शे बिखेर रखे थे। वो बस उन तीन पड़ावों को हासिल करके तारा से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहता था। पहला पड़ाव इंडोनेशिया के बाली में है। खूबसूरत जगह है और टूरिस्ट भी काफी आते जाते हैं। उसने भीड़भाड़ वाली जगह को चुना है, तो मतलब साफ है कि जब भी कोई उस पड़ाव के एसिड तक जाएगा, तब अकेले उनकी जान खतरे में नहीं आएगी। आसपास की जनता को भी जानबूझकर टारगेट किया गया है, ध्रुव ने सर हिलाकर कहा। उसने उन तीन पड़ावों में से पहले पड़ाव के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने युग के कहने पर उसके डिस्चार्ज पेपर बनवा दिए थे। युग का बस चलता तो वो उसी दिन डिस्चार्ज लेकर घर पहुंच जाता, क्योंकि दो दिन में ही वो हॉस्पिटल में पूरी तरह बोर हो गया था। पर अर्जुन ने जानबूझकर उसके डिस्चार्ज को तीन दिन और डिले कर दिया था। पूरे पांच दिनों के बाद युग को डिस्चार्ज कर दिया गया था। युग अपने विला जाने के बजाय राणा मैंशन पहुंचा था और उसने पूरी फैमिली को डिनर पर एक साथ आने के लिए कहा था। युग की बात को वैसे भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। ध्रुव अपना काम बीच में छोड़कर राणा मैंशन पहुंचा तो वहीं तारा भी ड्राइवर के साथ वहां आ गई थी। पूरी राणा फैमिली वहां की बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। वीर भी आया हुआ था और उसकी निगाहें अलीशा को ढूंढ रही थी। वो नहीं जानता था कि अलीशा जापान के लिए निकल गई है। जैसे ही ध्रुव वहां पर पहुंचा, उसने युग की तरफ देखकर नाराजगी जताते हुए कहा, इतनी जल्दी डिस्चार्ज लेने की क्या जरूरत थी? मामू ने बताया कि आपने जिद करके अपना डिस्चार्ज लिया है।
रेस्ट ही करना है तो घर पर भी कर सकता हूँ, और मुझे मॉनिटर करने के लिए स्टाफ भी मौजूद है। मुझे हॉस्पिटल में काफी बोर फील हो रहा था, युग ने जवाब दिया और ध्रुव को अपने पास बैठने का इशारा किया। ध्रुव के पास वाली सीट पर तारा बैठी हुई थी। युग के कहने के बावजूद भी ध्रुव तारा के पास में बैठने के बजाय अलीजा के पास जाकर बैठ गया था। पूरे तीन दिन बाद तारा और ध्रुव एक दूसरे के सामने आए थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे। तारा की आंखों में पछतावा था, तो वहीं ध्रुव की आंखों में नफरत और गुस्सा। उसने तारा को इग्नोर करके बाकी लोगों की तरफ देखा। ध्रुव ने भी इस बात को नोटिस किया कि अलीशा वहां नहीं थी। मैंने यहां सबको आने के लिए कहा था, फिर अलीशा कहाँ है? युग ने शब्द की तरफ देखकर पूछा। चलो, किसी को रियलाइज तो हुआ कि अलीशा यहाँ नहीं है, वरना मुझे लगा था कि कोई उसके बारे में पूछने तक नहीं वाला, शब्द ने तंज भरे लहजे में कहा और फिर सारा की तरफ देखा, जो अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि सच में उसे इस बात का एहसास नहीं था कि पिछले तीन दिनों से अलीशा घर पर नहीं थी। वो कहीं गई है क्या? सारा ने तुरंत पूछा। किसी प्रोजेक्ट के चलते जापान गई है और अगले एक साल तक वहीं पर रहने वाली है, शब्द ने जवाब दिया। अलीशा एक साल के लिए उनसे दूर चली गई थी। ये सुनते ही बाकी सबको झटका सा लगा, खासकर वीर को। ध्रुव वीर की तरफ ही देख रहा था। जब से उसे अलीजा ने बताया था कि वो अलीशा को पसंद करता है, तब से उसे इस बारे में भी उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला था। कम से कम उसे हमसे मिलकर जाना चाहिए था, अलीजा ने बेपरवाही से कहा। अच्छा, और वो तुमसे मिलकर क्यों जाती? क्या जाने से पहले उसे दोबारा तुम सबसे ये सुनना था कि युग की हालत की जिम्मेदार वो थी? शब्द को मौका मिला था तो वो शांत नहीं रहने वाला था। अब तक इस बारे में किसी ने जिक्र तक नहीं किया था, पर अब जिक्र होने पर युग को आधी अधूरी बातें सुनकर भी सब समझ आ रहा था। कुछ पलों के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा गई और अलीजा के हाथ खाते हुए रुक गए। अब तो ध्रुव को भी अपने बर्ताव पर अफसोस हो रहा था कि उसने भी जाने अनजाने में अलीशा का दिल दुखाया था। वहां अगर सबसे ज्यादा किसी को बुरा लग रहा था तो वो सारा थी। कृषा ने सारा के हाथ को पकड़ा और उसे समझाते हुए बोली, अगर तुम दोनों के बीच किसी तरह की डिफरेंस आ गए हैं तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। वो अलग है, इस वजह से तुम लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हो। उसने कभी मौका ही नहीं दिया, सारा ने भारी आवाज में कहा। और क्या तुम्हारे पास टाइम था उसे सुनने के लिए? शब्द बोला। उन सबकी बातें सुनकर युग ने आंखें घुमाई और तेज आवाज में कहा, इस घर की डाइनिंग टेबल पर जब भी खाना खाने बैठो, इसी तरह तमाशा लगने शुरू हो जाते हैं। बीते सालों में कुछ नहीं बदला है। क्या तुम लोग चैन से खाना नहीं खा सकते? रही बात अलीशा से मिलने की, तो एक साल बाद वो वापस आ जाएगी।
युग का जवाब सुनकर शब्द ने उसकी तरफ घूर कर देखा। पूरे एक साल के लिए अलीशा उनसे दूर गई थी, फिर भी वो इतना बेपरवाह कैसे हो सकता था। युग को उसके इस तरह देखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सामने सिंपल खिचड़ी रखी हुई थी, उसे भी वो इंजॉय करके खा रहा था। युग ने शब्द की तरफ तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सारा ने अलीजा की तरफ गुस्से से देखा। बातचीत की शुरुआत अलीजा की तरफ से ही हुई थी। उसी को लगता था कि युग के इंजर्ड होने के पीछे अलीशा का हाथ है। इससे पहले कि अलीजा को डांट पड़ती या सारा से कुछ सुनने को मिलता, उसने तुरंत बातचीत का टॉपिक बदलते हुए तारा की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, हम भी ना क्या दुख भरी उदास बातें लेकर बैठ गए हैं। मैं अलीशा से बात कर लूंगी, उससे मिलने भी चले जाएंगे। फिलहाल हम इस घर की गुड न्यूज पर बात करते हैं। क्या किसी को पता है कि तारा प्रेग्नेंट है? हालांकि अलीजा ने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की थी कि वहां का माहौल खुशनुमा हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बातें इस वक्त ध्रुव के गुस्से की आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही थीं। वहीं तारा के हाथ भी खाते हुए रुक गए थे। अब तक ध्रुव शांत था, लेकिन अब वो चुप नहीं रहने वाला था। बेचारी तारा, उसे अभी और ताने सुनने पड़ेंगे। मैंने बहुत बार रीडर्स से कमेंट पढ़े हैं जिन्हें तारा अच्छी नहीं लगती। पता नहीं कुछ रीडर्स को वो अच्छी क्यों नहीं लगती, पर मुझे तारा का कैरेक्टर पसंद है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, देखते हैं ध्रुव का गुस्सा किस तरह निकलता है।